अब आगे यहाँ से मूसा और फिरौन के जादूगरों का मुकाबला है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, फलम्मा जा सहरतु कालू लिफिरौना अ इन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। जब हाजिर हुए जादूगर तो उन्होंने फिरौन से पूछा, क्या हमें कोई इनाम भी मिलेगा अगर हम मूसा पर गालिब आ जाएं? यहाँ तक हमने अपनी बात रोकी थी तिलावत से पहले, ताकि हम देख लें कि वो किरदार जो सच्चा ईमान दिल में आने से पहले होता है उसमें और ईमान कबूल करने के बाद वाले किरदार में क्या फ़र्क है। यहाँ जादूगर भी थे, लालच भी दिख रहा है, बादशाह की खुशी के लिए काम कर रहे हैं, और तीसरी बात है कि कुफर पे भी थे। लेकिन आगे क्या होगा? काल नाम व इन्नकुम इज़ल लमिनल मुकर्रबीन। फिरौन ने कहा, हाँ ज़रूर, और बेशक तुम तो करीबी लोगों में शामिल कर लिए जाओगे। हर बादशाह की तरह फिरौन ने भी ऐसे लोगों को अपने हाथ में रखने के लिए लालच दिया कि तुम कुछ करोगे, हम ज़रूर तुम्हें अपने करीब करेंगे। यही फ़र्क होता है एक बंदे के नेकी के काम को करने का और किसी इंसान के अपने मौजे या अपने फ़न के इजहार का। कुछ लोग अल्लाह को दिखाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए करते हैं। ऐसे लोगों को अम्बिया कराम या अम्बिया कराम के सच्चे फॉलोअर्स कहा जाता है, और कुछ लोग वक्त के बादशाहों या दूसरे बड़ों को खुश करने के लिए करते हैं। قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون। मूसा ने इन्हें फरमाया, फेंको जो तुम फेंकने वाले हो। पहल की दावत दी, इससे मूसा अलैहिस्सलाम का एतमाद झलकता है कि पहल करने की दावत वही देता है जिसको इस बात का यकीन होता है कि चाहे मुझे शुरू में मौका मिले चाहे आखिर में, मैं जो हूँ इंशाअल्लाह ताला जब अपना जौहर दिखाऊँगा तो कामयाबी मुझे ही मिलेगी। हमारे यहाँ दूसरे को बात सुनाने, किसी की सुनने के मामले में भी अमूमन यही रवैया अख्तियार किया जाता है कि पहले मुझसे सुन लें, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे की सुन ली तो आप उसकी बातों में आ जाएं। लेकिन ये भी एक इंसान के बेएतमाद होने की दलील है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ओके हटो, ये ऐसे ही जैसे आज के दौर में कोई टॉस खेला जाए, जब टॉस जीतने के बारे में कहा जाए कि भाई आप खुद खेलें या दूसरे को खिलाएं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दे दी कि आप जो हैं पहल कर सकते हैं। अब क्या हुआ? فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ, बस उन्होंने डाल दी अपनी रस्सियाँ। हिबाल हिबल की जमा है, हबल या हिबल दोनों तरह से ये लफ्ज़ आप देख सकते हैं, रस्सी के लिए आता है। وَعِصِيَّهُمْ, देखिए इस लफ्ज़ का आराब कितना मुश्किल है। आम तौर पे लफ्ज़ जो आता है वो असा आता है, असा नाफरमानी के मानों में मासियत, लेकिन यहाँ आइन की जेर है। इसी ये हों, इसी या हम, तो यहाँ इस मुराद लाठियाँ हैं, असा की जमा है असल में। हम को आगे हटा दें तो पीछे जो लफ्ज़ रहता है ना इसी या, तो ये असा से आगे का थोड़ा सा लफ्ज़ है। सलाम ने कहा कि आप डालिए, उन्होंने अपनी रस्सियाँ और जो लाठियाँ वो लेकर आए हुए थे वो डाल दी। वह कालू बी इज़्ज़त फ़िरऔना, और बड़े वसूख से कहा कि नामूस फ़िरौन की कसम, इन्ना लनहनुल गालिबून, यकीनन हम ही गालिब आएंगे। ये जो लफ्ज़ है बेइज्जत फ़िरौन, ये बिल्कुल वही नारा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ओहद के मैदान में जीतने पर अबू सुफियान ने लगाया था कि जय हुबल, हुबल की जय हो। फिर उसने उज़्ज़ा की बात की। हमारे यहाँ इसको अमूमन इस तरह से कहा जाता है कि फलां का इकबाल बुलंद हो, फलां की इज्जत हो। कुछ हद तक पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है वो भी इसी से मिलता जुलता है। कुछ इस किस्म की बात करके उन्होंने फ़िरौन को बड़ा बनाया, और ये उस दौर का रिवाज था। अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी लोग बादशाह की कसम, तेरे सर की कसम, तेरी दाढ़ी की कसम, तेरे बाप की कसम, इस किस्म की कस्में खाते हैं। इस्लामी शरीयत में इन सारी चीज़ों को मना कर दिया गया कि इस तरह की इजाज़त नहीं। अगर किसी को कसम खानी भी है तो वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की खाए, और वो भी कब, जबकि वो सच्चा हो, इसके अलावा वो कसम नहीं खा सकता। खैर, उन्होंने ये नारा लगाया और साथ ही फ़िरौन की जय कर दी, जैसे बादशाह के नाम पर कसम भी खा दी, और साथ ही यकीन का इजहार कर दिया कि वाकई हम ही गालिब आएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ? फ़अल्क़ा मूसा असाहु, फिर फेंका मूसा ने अपना असा। फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, तो वो यकायक निगलने लग गया था जो उन्होंने फरेब बना रखा था। तल्क़फ़ु का लफ्ज़ वही है जो पीछे भी गुजर चुका, लकफ़ा निगलने को कहते हैं, जैसे लुकमा मुँह में बना के निगला जाता है, बिल्कुल वही लफ्ज़ इस लफ्ज़ को सुनकर फीलिंग आती है। यानी एक लुकमे की तरह वो उन सब की रस्सियों को जो वो उन्होंने बनाई थी, देखने में सांप लग रही थी, उनको खा गया। मा या फिकून इफ्क से है, हमजा फा का इशारा है इसमें उन्हीं झूठे सांपों की तरफ जो कि उन्होंने अपने जादू के जोर से लोगों के सामने पेश कर दिया, और लग रहा था कि वो सांप है लेकिन हकीकत में वो सांप नहीं थे। बस ये मंज़र देखना था। फ़ुल्किया सहरतु साजिदीन, बस ये मौजज़ा देखकर गिर पड़े जादूगर सजदा करते हुए। ये सहरतु, ये साहिरुन की जमा है कि जादूगर जो थे वो सजदे में पड़ गए। लफ्ज़ उल्किया को देखिए, बहुत ही काबिल गौर है। ये नहीं कहा कि गिरे, बल्कि उल्किया मजहूल है, पैसिव वॉइस है, किसी ने डाला। ये कौन था? ये अंदर की ताकत थी। जब एक इंसान को सच्चा ईमान दिखता है, जब उसको अल्लाह ताला की कुदरत का कोई भी इजहार नज़र आता है अपनी ज़िंदगी में, तो उसके बाद वो अंदर के हाथों मजबूर होकर अल्लाह के आगे झुकने वाला बन जाता है। यही हालत उस वक़्त उनकी हुई। जादूगर गो के जादूगर थे, लेकिन साहिब इल्म थे, और वो अपने जादू की लिमिट्स जानते थे। उनको जादू और मुझसे का फ़र्क अच्छी तरह पता था। इसीलिए एक काफिर जो जाहिल हो, यानी दुनिया का बेइल्म ना हो, उससे वो काफिर बेहतर होता है जो कोई दुनिया का इल्म हासिल कर चुका होता है, क्योंकि ऐसे शख्स को बात समझ आनी निस्बतन आसान होती है। अगर अना बीच में ना आए तो ऐसे लोग बहुत जल्दी बात को मान लेते हैं। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, उन्होंने बरमला कह दिया कि हम ईमान ले आए रब्बुल आलमीन पर। कौन सा रब? रब्बी मूसा व हारून, क्योंकि रब्बिल आलमीन कहने से शुबा लग सकता था कि कहीं फिरौन खुश होता फिर, हाँ, इन्होंने मुझे सारे जहानों का रब कह दिया। कहा नहीं, मूसा और हारून का रब। अब तो फिरौन की अना पे चोट पड़ी। काल आमन तुम लहू कबल अन आज़न लकुम, फिरौन ने अपनी खिफत मिटाने के लिए कहा, तुम तो ईमान ला चुके थे इस पर इससे पहले कि मैं तुम्हें मुकाबले की इजाज़त देता। मुराद क्या है कि तुम तो पहले से ही मूसा के साथ मिल चुके हो, मिली भगत है तुम्हारी, और ऐसे ही एक ढोंग तुमने रचाया। ये अंदर गठजोड़ हो चुका था। अनास अन लकुम, कि मैं तुमको मुकाबले की इजाज़त देता, और इन्नहू लकबीरुकुमुल्लज़ी, और ये तो तुम्हारा गुरु है जिसने तुम्हें सहर का फ़न सिखाया है। फलसौफ तालमून, तो अनकरीब इस साजिश का अंजाम तुम्हें मालूम हो जाएगा। एक मफहूम तो इसका ये बना जो आपके सामने मैंने रख दिया कि फ़िरौन की अना पे जब चोट पड़ी तो उसने कहा कि अच्छा जी, ये अंदर से खेल सारा खेला जा चुका था, मुकाबले की इजाज़त से पहले ही तुमने अंदर बात कर ली हुई थी, और आज तुमने सबके सामने इजहार कर दिया। लेकिन एक दूसरा मफहूम भी मिलता है, और वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, और वो क्या है कि तुम मुझसे पूछे बगैर ईमान ले आओ। यहाँ आज अना लकुम से मुराद ईमान लाने की इजाज़त है। पीछे इजाज़त जो थी वो मैंने आपको जिस मफहूम में बताया वो मुकाबला करने की इजाज़त थी। तो फिरौन ने कहा कि मेरी इजाज़त से पहले तुम इस पर ईमान ले आए, यकीनन यही तुम्हारा बड़ा सरदार और गुरु है जिसने तुम सबको जादू सिखा दिया। अब देखिए कि फिरौन की इन बातों से ही पता चल रहा है कि वो कितना सटपटा चुका है। उसने जब बातिल के ऊपर हक की चोट महसूस की तो उसको समझ आ गई कि असल में मूसा जो है ये जादूगर नहीं है, नबी है। लेकिन वही बात है ना कि उसको मानना नहीं था। पीछे सूरत अंबिया आयत 18 में भी हम पढ़ चुके कि बल नक़्ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल-बातिली फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ुन, बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं, बस वो इसका सर तोड़ देता है और झूठ इसी वक्त नाबूद हो जाता है। तो लिहाजा फिरौन जो था वो इन सारी चीज़ों से बहुत ही तकलीफ़ महसूस कर रहा था। अपने आप को उसने सच्चा साबित करने के लिए अपने ही साथियों पर इल्ज़ाम लगाया। यहाँ आप देखिएगा कि कुफर की कारस्तानियाँ, कभी भी जो बंदा अल्लाह का नहीं होगा ना, वो बंदों का भी मुखलिस नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि जो एक रब से कटा वो दुनिया वालों से भी कट गया। कितना बदगुमान, अभी उनको मुकर्रब बना रहा था, अभी उनको इसने बुलवाया, इसके हर कारे गए बुलवाने के लिए, सारा कुछ इसके मामले से हुआ, कोशिश सारी इसकी, और नतायज जब मुख्तलिफ देखे तो परेशान होके कहने लगा तुम तो अंदर से मिले हुए हो। बदगुमान होने लगता है। और ये मंजर सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा था, बल्कि इस मंजर को देखकर वो क्राउड जो उसने जमा किया हुआ था उसमें से भी अक्सरियत मुसलमान हो गई। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम जो है वो भी इसी मौके पे मुसलमान हुई थी। यानी फिरौन जिस आग से दूसरों को बचाना चाहता था वो आग उसके अपने घर के अंदर लग गई, ईमान की आग, इस्लाम की आग, और उसी वक्त वो मर्द मोमिन भी मुसलमान हो गया था, जिसका तस्करा आगे सूरत मोमिन में हम पढ़ेंगे कि जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की जान भी बाद में बचाई थी और उसको समझ आ गई। आप देखिए, बात एक ही होती है, एक के दिल में उतर जाती है, दूसरे के कानों से टकराती है। एक को बोझल लगती है वो बात सुननी, दूसरे का दिल उसके अंदर पसीज रहा होता है फ़र्क क्या है, आप किस जगह, क्या दिल लेकर, क्या सोच लेकर किस चीज़ को सुन रहे हैं, कहाँ पे आप उसको लेके जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों से इतना बड़ा मुजज़ा देखकर जादूगरों का खूब अच्छी तरह समझ आ गया कि अब हमें मूसा के पीछे आना है। देखिए कि इसी तरह के मुजज़े हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। ये तो मूसा के ऐसा को सांप बनता देखकर उन्होंने ईमान कबूल किया। इसी तरह की सांप नुमा तकलीफ़ें, बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें हर इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह ताला दिखाता है। हर बीमारी एक निशानी है, एक मुजज़ा है कि रब को पहचानो। हम जहाँ आजीज़ आ जाते हैं ना, लफ्ज़ मुजज़े पे गौर करें तो आपको इसकी रूह भी समझ आएगी कि मुजज़ा इज्ज़ से है ना, ऐन जीम ज़ा, आजीज़ आना। तो मुजज़ा क्या चीज़ होती है कि जिसको समझने से इंसान की अक्ल आजीज़ आ जाए। अब आप कहते हैं कि डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा क्या बीमारी है, आजीज़ आ गए ना। आप कहते हैं कुछ समझ नहीं आती इनका दिल क्यों नहीं जुड़ रहा, दोनों अच्छे हैं लेकिन घर टूटने के करीब हो गया, आजीज़ आ गए ना आप। ये सारे वाक़ जो होते हैं ना ज़िंदगी के अंदर आने वाले, ये मोजज़ात होते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से निशानी है कि पहचानो कि तुम इसके आगे अब कुछ नहीं कर सकते। कोई ताकत है जो तुम्हारी सारी कोशिशों के बावजूद हालात को तुम्हारे हाथ से निकालती जा रही है। जो लोग इन चीज़ों को समझ जाते हैं वो फिरौन के जादूगर की तरह ईमान की तरफ आ जाते हैं, फिर उनको बिल्कुल किसी धमकी का कोई खौफ नहीं आता। लेकिन कुछ लोग मुनाफिकों की तरह कि जिनको ये नहीं पता, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुनाफिक की मिसाल उस गधे की है जिसको नहीं पता कि मेरे मालिक ने मेरे ऊपर जो बोझ डाला है वो खुश होकर डाला है या नाराज़ होकर डाला है। इसी तरह मुनाफिक ना तो अल्लाह की तरफ से आने वाली मुश्किलात को समझता है कि अल्लाह ने क्यों डाली, और ना खुशियों को समझता है कि अल्लाह ने मुझे ये खुशी क्यों दी। तो लिहाजा अल्लाह ताला से हिकमत वाली नज़र मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ दुनिया में ज़िंदगी में जो कुछ होता है तो हमें उनकी हिकमत सुझा, हमें उन चीज़ों के रास्ते से अपनी तरफ आने की तौफीक अता फरमा। और जब ये सब हो गया फिर तो रास्ते की सारी रुकावटें हट गईं। फिरौन धमकियों पे धमकियां दे रहा है, लौकतियन्नाइदियकुम वर्जुलकुम मिन खिलाफिन, और इस साजिश का अंजाम तुम्हें खूब मालूम हो जाएगा। इस ईमान के कबूल करने की सज़ा क्या है कि कत्ता यो कत्ती, एक लफ्ज़ होता है कता, यहाँ क्या है कत्ता, टुकड़े टुकड़े करना। बाब तफ़ील के अंदर कोई चीज़ चाहती है तो वो रेज़ा रेज़ा, जिसको कहते हैं ना कीमा बना देना, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे हाथों के और तुम्हारे पाँव मुखालिफ सिमतों से काटूंगा। मुखालिफ क्या कि दायां हाथ काटूंगा तो बायां पाँव काटूंगा, क्यों, इसमें अजियत ज़्यादा है। दोनों अगर एक ही तरफ के कट जाएं तो बंदे के मरने का भी डर होता है ज़्यादा। कहा कि तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम्हें लोगों की नज़रों में एक निशानी बना के दिखाना चाहता हूँ कि किस किस्म की सज़ाएं मिलती हैं उन लोगों को जो फिरौन की खुदाई को चैलेंज करते हैं। और सिर्फ इस पे भी बस नहीं करूँगा, वल उसल्लिबन्नकुम अजमाईन, और ज़रूर तुम सबको सूली पे चढ़ा दूंगा। सल्लब युसल्लिबु तस्लीब स्वात लाम्बा, यानी बिल्कुल तुम्हें सूली पे चढ़ाऊंगा। रिवायात में आता है कि फिरौन पहला शख्स है जिसने सूली पे चढ़ाने का रिवाज शुरू किया, और उस दौर में सूली पे इस तरह नहीं चढ़ाया जाता था जैसे आज के दौर में, बल्कि वो किसी को खजूर के जो तने होते हैं या लकड़ियाँ होती हैं उसके साथ हाथ और पाँव को बांध देते थे, या बाज़ दफ़ा दीवार के साथ हाथों को रख के हाथों के अंदर कील डाल देता था। और तकलीफ़ और अजियत की हद थी, और अजमाइन सब को कर दूंगा। अब आप सोचिए कि आज इतनी बड़ी धमकियां तो छोड़ें, आज तो कोई कह दे कि हम तुम्हें घूर के देखेंगे, हम तुम्हारी मदद बंद कर देंगे, तुम्हारी एड बंद होगी, तुम्हारी तरफ हमारी नज़र नहीं होगी, तो लोग कांपने लगते हैं। लेकिन जब सच्चा ईमान अंदर आता है तो जुमले क्या बोले, कालू ला दईर, कहने लगे हमें कोई परवाह नहीं, कोई दरर नहीं कि कल क्या करेंगे और क्या होगा, क्योंकि इन इला रब्बिना मुनक़लिबून, और हम तो अपने परवरदिगार की तरफ पलटने वाले हैं। हमें कौन सा इस दुनिया में रहना है कि जिसकी वजह से हम यहाँ की फिक्र करें। देखिए ये है ईमान की शम्मा, फिर जुरत भी आती है, फिर शुजात आती है, फिर इंसान सारे खतरों से बेनियाज होकर ऐलान करता है ला दईर, कोई गम नहीं, कर लो जो करना है, रोक लो, करो जुल्म, इस्लाम की, दीन की, कुरान की, मकसद की ज़िंदगी गुजारने पे नाराज़ हो जाओ, छोड़ते हो छोड़ दो, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। बिल्कुल इसी तरह का मफहूम आप 28वें पारे की आखिरी सूरत तहरीम में पढ़ेंगे कि जिसमें बीबी आसिया ने भी यही कुछ कहा था कि रब्बिबनिली इंदका बैतम फिल जन्ना, कि अल्लाह मेरे लिए जन्नत में घर बना, नहीं रहना इस दुनिया में। अब देखिए, सच्चा ईमान बंदे को इस दुनिया में रहने ही नहीं देता, उसकी नज़रें ऊपर लगी होती हैं। काफिर इस दुनिया को बचाने के लिए फिक्र करता है, वो इस दुनिया के लिए जीता है, हालांकि सच्चा मोमिन उस दुनिया में जाने की तमन्ना में जीता है। मोमिन के लिए ये दुनिया एक ट्रेनिंग रूम है, एक प्रेपरेशन रूम है, एक तैयारी का वक्त है कि कब ये मेरा ख़त्म हो ट्रेनिंग सेशन और असल जॉब पे जाऊँ। आपने कभी किसी को डॉक्टर बनते देखा होगा, 2-3 साल उनको हाउस जॉब करवाए जाते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं। कहते हैं जल्दी से जान छूटे, हम बस आज़ादी से अपने असल काम पे लग जाएं। यही है मोमिन के लिए, मोमिन इस दुनिया को वाकई अपने लिए एक हाउस जॉब समझता है कि बस यहाँ तो ये छोटे छोटे किरदार बना के अल्लाह ने मुझे आजमाया, असल मेरा ठिकाना है। उसकी नज़रें आगे लगी होती हैं और इस तरह से वो बंदा आगे जाने की फिक्र करता है। यहाँ तो ये बात कही कि ला दईरा, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि फ़क दीवान तकादिन, कर ले जो तूने करना है, जो हमारे साथ करना चाहता है तू कर दे, हम नहीं हटेंगे। ये कैसी बात है, आप देखिए कि 1 मिनट में 70 साल के काफिरों के अंदर इतना बड़ा इनकलाब आ जाए कि वो मोमिन नहीं बल्कि गाजी, गाजी नहीं शहीद, किसी रंग में भी बन जाए अल्लाह की तरफ आने वाले बनते हैं। अब ये अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं कि अल्लाह अगर वाकई फिरौन ने हमें आज मार ही दिया तो हमारा क्या बनेगा, हम तो बड़े गुनाह करके आ चुके हैं, लिहाजा इन्ना नतमोय यग़फिर लना रब्बुना खताया अन कुन्ना अव्वलल मोमिनीन, हमें ये उम्मीद है कि बख्श देगा हमारे लिए हमारा रब हमारी खताएं, क्योंकि हम पहले ईमान वाले हो गए। किस में से? फिरौन की कौम में से। हम पायनियर्स हैं, हम साबिकून हैं। ए अल्लाह, रिवाज नहीं था ईमान कबूल करने का, हम ईमान कबूल कर चुके हैं, अब तू हमें माफ़ कर दे। ये है ईमान, खौफ और उम्मीद के बीच का नाम। एक तरफ रब से मिलने का शौक भी है, मुलाकात की तड़प भी है, तलब भी है, और दूसरी तरफ गम भी है कि अल्लाह ने अगर पूछ लिया तो क्या होगा। दुनिया में कोई मामला अपना ज़िंदगी का सामने ला के देखें, ये दो कैफियत उसी वक्त होती हैं जब शौक बहुत होता है लेकिन अंदेशे भी होते हैं। किसी को मिलने जाते हैं आपसे बड़ा है, ओहदे में, मर्तबे में, एजाज़ के नाते से, खुशी भी बहुत होती है लेकिन साथ दिल धक 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 कर होता है, कदम मन मन भर का हो जाता है। इंसान को फिक्र होती है कि कोई ऐसा काम ना कर दूं कि जिसकी वजह से मेरा जाना रुक जाए। एक सच्चे मोमिन को इस दुनिया से जाते हुए भी यही अंदेशा होता है कि अल्लाह शौक तो बड़ा है तुझे मिलने का, बेचैन है, तड़प रहे हैं, हम तो सारी ज़िंदगी तेरे से मिलने की तमन्ना में थे, लेकिन मसला क्या है कि साथ ही साथ अपने गुनाहों का खौफ भी है। कहीं ओवरवेट तो नहीं हो चुके, कहीं एयरपोर्ट पे तो नहीं रोक लिए जाएंगे, कहीं हमारे बैगेज खुल तो नहीं जाएंगे, कहीं हमें उसका कोई टैक्स तो या उसके कोई पैसे तो पे नहीं करने पड़ेंगे। इस तरह इंसान ईमान और खौफ की मिली जुली कैफियत में इस दुनिया को छोड़ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फिरौन के जादूगर सुबह को काफिर थे, जादूगर थे, जहन्नमी थे, और चाश्त के वक्त जन्नती बनकर वो अल्लाह की जन्नतों में दाखिल हो चुके थे। और फिरौन ने भी सिर्फ धमकियां नहीं दी, करके दिखा दिया। अब बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि आज के दौर में इस्लाम पे जो अमल करना मुश्किल है उसको छोड़ दो, फितना ना बनो, तो क्या फिर मूसा के जादूगरों को भी यही मशवरा हम देंगे? आज जिस तरह से इस्लाम का जूस बनाकर और उसको ब्लेंड करके मिल्क शेक बना के पिलाया जा रहा है, ये चीज़ हर एक के लिए इबरत की है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते तो क्या मुश्किल थी, उनकी तो जान के ला लेते, कह देते हाँ फिरौन तू फिर जो कहता है ठीक है ले आओ, फबी इज़्ज़त फिरौन दावल गाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि चंद लोग जब इस्तकामत के दर्जे पे फायज होते हैं बाकी सबको भी थाम लेते हैं। बड़े टेबल पे सिर्फ 4 कील आप लगा दें तो उस टेबल के ऊपर आप कितनी चीज़ें रख सकते हैं, और 4 कील उतर जाएं तो सारी चीज़ें गिर जाती हैं। इसी तरह ठुके हुए लोग हक के आगे सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हुए हैं, बातिल के आगे बने खड़े हुए हैं। ऐसे लोग फिर वाकई बड़ी बड़ी उम्मतों के रहनुमा बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनका तذکرہ किया, अब यहाँ पे वो बात पूरी हुई। इसके बीच में बहुत लंबी कहानी थी, जादूगर मान गए, फिरौन ना माना, सब कुछ देख लिया, क्यों नहीं समझ आती बात? आप कहते हैं फलां को बात समझ ही नहीं आती, आप पूछे फिरौन को क्यों नहीं आती थी? जादूगर तो उसी के कौम के लोग थे, बीवी तो उसी के घर के अंदर रहती थी, क्यों समझ नहीं आती? क्योंकि अपनी बड़ाई का शिकार थे, तासुब था, खुद को बड़ा बना हुआ था, झूठी इज्जतों के पोल थे। और ऐसे लोगों को समझ आए ना आए, रिवायात में आता है कि अंदर से फिरौन भी मानता था रब को। एक मौके पे कहत पड़ गया और इसने कह दिया लोगों को कि कल तक दरियाए नील में पानी आ जाएगा। अब कह तो दिया, अब करूं क्या? तो कहते हैं कि रात को अपने जिस्म पे बिल्कुल मुख्तसर से कपड़े पहन के, यानी बड़ी आजजी और मस्कनत की कैफियत पैदा करके वहाँ दरिया पे गया और अल्लाह को पुकारा कि अल्लाह के मुझे पता है कि ये दरिया का पानी तू ही खोलेगा, तो मैं तो कह आया हूँ, लेकिन तू मेरी इज्जत रख ले, तू इस पानी को चला दे। अल्लाह ने उसकी भी सुन ली। आप कहते हैं जी मौलवी साहब की दुआ बड़ी कबूल होती है, फलां की तो बस दुआएं ऐसी कबूल होती हैं कि वो हाथ में लेके बैठे हुए इस टाइम कोई दुआ करानी है कराओ, ठप्पा लग जाएगा और आगे चले जाएंगे। अल्लाह ने फिरौन की भी सुन ली, अल्लाह ने तो शैतान की सुन ली। तो किसी की दुआएं अगर कबूल होती हैं तो भी फितना है, नहीं कबूल होती तो भी फितना है। और इस तरीके से फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मौका दिया कि बस अब ख़त्म, अब वक्ते फ़राक है, बहुत हुज्जत होगी। 40 साल तक मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को और उसके इर्द गिर्द के लोगों को समझाया बताया, बात ना बनी तो कहा कि वाओहैना इला मूसा अनसरी बी इबादी इन्नकुम मुत्तबाउन, और हमने वही की मूसा की तरह कि रातों रात यहाँ से मेरे बंदों को ले जाओ। और याद रखो फ़रसल फ़िरऔन फ़िल मदाइनि हाशिरीन, यकीनन तुम्हारा ताकुब किया जाएगा। पस भेजे फ़िरऔन ने सारे शहरों में हरकारे। मूसा अलैहिस्सलाम का ये खरूज जो था, सूरत मायदा में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, खरूज बनी इसराइल के नाम पे आज भी बाइबल में इसके बारे में बहुत सी डिटेल्स आपको मिलती हैं। अचानक नहीं हुआ था ये खरूज, पूरी जहन साजी हुई, प्लानिंग के साथ हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को कुछ जगहों पे जमा किया, फिर मशवरे हुए, कहा आहिस्ता आहिस्ता घर मूव करते जाओ, एक टाउन बना लो, मुस्लिम टाउन, तौहीद टाउन, वट एवर, और दरिया के किनारे बनाना। कुछ साल इसमें भी लगे, पहले सारे मिलजुल के रह रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता। देखिए दुनिया में ये अलग अलग हो जाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला अगर अजाब भी आता है तो इंसान नेक होने की वजह से उनके अजाब में शरीक नहीं होता। और दूसरी बात है कि फिर जब अलग हुए तो सोच बदली, ज़ाहिर है कि इतने अरसे से बनी इसराइल फिरौनी कल्चर के अंदर रह रहे थे, उनकी नस्लों की सोचें बदल चुकी थी, मरूब हो चुके थे, उनके रंग ढंग इख्तियार कर चुके थे। अब एकदम अगर मूसा कहते कौम को कि चलो भाई चलते हैं आज, तो वो बच्चे तो वहीं रहते, माँ बाप चले गए होते। नहीं, ऐसा नहीं किया। पीछे हम पढ़ चुके हैं सूरत अल आराफ में तफसील से कि कहा कि अपने घरों को क्या बनाओ, बुयूतन क़िबला, अपने घरों में दीन कायम करो, नमाज़ें बाहर नहीं पढ़ने देते, तुम यहाँ पढ़ के देखो, इस तरीके से तुम अपना काम करो। और वही हुआ, कई साल लगे इसमें भी। मूसा ने उनकी नस्लों को बताया कि देखो गुलाम हो इस वक्त, और वाकई फिर वही लोग आगे आए। और मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी जहन साजी की तो एक रात चुपके से हिजरत का हुक्म हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल मक्का में तौहीद की दावत देते देते गुजर चुकी थी, और उसके बाद फिर कहा कि अब आज रात आप निकल जाएं हज़रत अबू बकर के साथ। तो लिहाजा वही नुक्ता आ गया, कहा कि अब आप ले जाओ, लेकिन याद रखो इन्नकुम मुत्तबाउन। यहाँ से अगर आप साथ ही नबी सल्लम की हिजरत को भी सामने रखें तो अल्लाह के नबी भी जब हिजरत कर रहे थे तो उस वक़्त भी हालात बड़े तंग थे। फिरौन ने भी पीछा किया। फिल मदाइन, मदाइन मदीना की जमा होती है, मदीना शहर को कहते हैं अरबी में। और पहले भेजे थे ना हाशरीन, वो क्यों भेजे थे? जादूगरों को बुलाने के लिए। अब दोबारा भेजे हरकारे, क्यों भेजे? कि ये तो रातों रात निकल रहे हैं, लिहाजा हम पकड़ते हैं। देखिए दिल में वो मूसा के असा से डरता था, क्योंकि उसको पता था ये जब मौका मिलता है ये सांप बन जाता है। इसलिए इसने सोचा कि मैं खुद नहीं जाता, सात लोगों को लेके जाता हूँ। पूरी तैयारी की, फौजें तैयार की, दस्तों के दस्ते, ताकि सारे मिलके चलते हैं। और इससे भी फिरौन की आपको प्लानिंग समझ आती है। देखिए कोई कुफर पे है या हक पे है, प्लानिंग प्लानिंग है। नाकामी या कामयाबी का मेयार इंसान के इस्लाम या कुफर पे नहीं होता, उसकी प्लानिंग पे होता है, कितना वो ऑर्गेनाइज है, किस तरीके से काम करता है। आज अगर बुराइयाँ फैलाई जा रही हैं तो वो डिसऑर्गेनाइज तरीके से नहीं फैल रही, वो ऑर्गेनाइज तरीके से फैल रही हैं। तो लिहाजा इसी किस्म की बातें करके उसने लोगों को जमा किया, और इस तरह से अब एक पूरा लश्कर तैयार हो चुका। ये काम भी मूसा नहीं कर सकते थे जो अल्लाह ने फिरौन से करा लिया। ये दूसरा मौका है ना, मूसा अलैहिस्सलाम इतने लोगों तक हक का पैगाम दिखा सकते थे कि असा जो था वो सांप बने और लोग देखें। एक मंजर लोग पहले देख चुके थे। दूसरा काम अल्लाह ने फिरौन जैसे फासिक से ये करवाया कि उसने फौजों की फौजें जमा कर लीं। मूसा बेचारे के पास इतने हथियार भी नहीं थे उस वक़्त कि इन सब के साथ मुकाबला करता और इनको मारता। ना उस वक़्त कोई नाइट्रोजन बम थे और ना एटम बम थे, लेकिन फिरौन ने खुद ही अपनी और दूसरों की मौत को आवाज़ दी और उनको बुला लिया, सब को इकट्ठे कर दो। पीछे हम सूरह यूनस में डिटेल से पढ़ चुके कि फ़मा आमना लिमूसा इल्ला ज़ुर्रियतम मिन क़ौमिही अला खौफ़ मिन फ़िरौनी व मलअहुम। उनके यंग्स कुछ जो थे वो ईमान ले आए थे मूसा पे, इसके अलावा कोई ना लाए। बड़े लोग जो होते हैं वो रिवायतों में पड़ जाते हैं और तकलीफ़ों में पड़ते हैं। बहरहाल पूरी फ़ौजें तैयार हो गई और फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का पीछा किया। क्या कहा? इन्नहा उलाई लशिरज़िमतुन क़लीलुन, ताकि लोगों को बताएं कि ये लोग एक छोटी सी जमात तो हैं। ये जो लफ्ज़ है ना लशिरज़िमतुन, तो शिरज़िमा कहते हैं मुख्तसर और हकीर गिरोह को। इसकी जमा होती है अशिरुज़्ज़म, अलिफ ज़ाल मीम कह लीजिए, यानी ये तो बहुत शरीर गिरोह है। अशिर शरीर से भी आप कह सकते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ये शरारती हैं। आज के दौर में क्या कहते हैं लोग, ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये फंडामेंटलिस्टिक हैं और कलील उन मुट्ठी भर हैं। गुस्सा तो उसको आ ही बहुत रहा था ना कि इनको कैसे जुरत हुई, हमारी ग़ुलामी से निकल गए, इतने सालों की ग़ुलामी थी और उसके अंदर से निकल कर ये आज बाहर जाने लग गए। लिहाजा ये छोटी सी मुट्ठी जो है कर क्या रही है, वइन्नहुम लना लगाइज़ून, और ये तो देखो हमें गुस्सा दिला रहे हैं। आज भी चाहते हैं गुस्सा बड़ी बड़ी ताकतों को, वो कहते हैं ये हमें गुस्सा दिला रहे हैं, ये अब कहते हैं हम अपने काम खुद करेंगे, हम अपने हथियार खुद बनाएंगे, अब हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। हर दौर का फिरौनी कल्चर गुस्से में आ जाता है, सीख पा होने लगता है जब उस दौर के मुसलमानों को होश आने लगती है। जब मुसलमान अल्लाह से जुड़ने लगते हैं उस दौर के फिरौनियों को गम लग जाता है कि अब कल तो ये हमारे हाथ में ही नहीं आएंगे। और आप देखिए कि ये जो छोटी सी जमात का है ये हकारत के तौर पे का है, हालांकि उस वक़्त बनी इसराइल 6 लाख का एक बड़ा गिरोह थे। जैसे आज हम मुसलमान 3 बिलियन के भी हो गए, इसके बावजूद बास बड़ी ताकतों की नज़रों में हम लशर ज़िमतुन हैं, छोटी सी जमात हैं, छोटे से गिरोह हैं। और उसको इतना गुस्सा आया कि हमें गुस्सा दिला रहे हैं, बग़ैर इजाज़त के यहाँ से निकल गए, हमें पूछा भी नहीं, हमें बताया ही नहीं, पॉलिसीज़ खुद ही बना ली, अपने कानून खुद बना लिए, खुद ही मुआहदों को ख़त्म करने का सोच लिया। आज भी इसके मुख्तलिफ रूप आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने आप को दूसरों के मुकद्दर के मुहाफिज समझने वाले होते हैं, उनको गुस्सा आता है, वो कहते हैं अच्छा अब मज़ा चखाएंगे, अब आएगी गोली तुम्हारी तरफ। कवैन्ना लजमीउन हाजिरून, फिक्र ना करो हम सब इनके बारे में बहुत मुख्तात हैं, यानी हमने भी खूब इंतज़ाम किए हुए, पता लग जाएगा इनको सर उठाने का मकसद क्या है। इसका नतीजा क्या है, हम इनको खूब अच्छी तरह बता देंगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है।